सेंटर।
स्वीट महल वाले आदा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 to 700 तक की कैपेसिटी खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉन। हुने कॉल करो आते अपनिया पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
बल्ले भाई बल्ले, मैं तो बन गई ओनर अपनी ट्रकिंग कंपनी की, क्योंकि मैंने ली थी ट्रेनिंग उस कंपनी से जिसके हैं 500 से ज्यादा 5-star गूगल रिव्यूज। नाम है मेज कंसल्टेंसी। तो अगर आपको भी ट्रक डिस्पैचर या फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट बनना है तो आज ही ट्रेनिंग के लिए मेज कंसल्टेंसी को कॉल करें। नंबर है 9058262919, दैट इज 9058262919। बल्ले बल्ले।
आदमी बुलबुला है पानी का,
द पोएट, द राइटर, द लेजेंड गुलजार, लाइव इन कॉन्सर्ट अलॉन्ग विद टॉप बॉलीवुड सिंगर्स।
दिल ढूंढता
नाम भूल जाएगा।
फ्राइडे जुलाई 15th एट प्रेस्टिजियस रॉय थॉमसन हॉल, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डोंट मिस इट। गुलजार्स इजाजत।
फोर टिकट्स कॉल 416-854-2923 416-399-1540।
जी साहब नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड साहब 6:58 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और अब मामला बड़ा सीरियस है, बहुत सीरियस मामला है। इसमें आप जरा प्लीज डोंट कॉल मी, ओके? बड़ा सीरियस मामला है अब, और अब हमने डायरेक्ट जाना है न्यूज की जाने, मगर पहले उसके हम बताएंगे आपको अपनी प्यारी सी क्या
वेबसाइट। हाँ जी, वेबसाइट वहाँ पे जी आप जाएं और वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। तो ये देख लें आप और सुन बाद में लेना, ठीक है? अच्छा जी, नीचे आते जाओ लोकल खबरों के नीचे, जो आपको और बहुत सारी चीजें नजर आती हैं वो ये हेल्थ की पढ़े भाई। हेल्थ में बहुत कुछ हो रहा है, मेडिसिन लाइफस्टाइल के क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट की भी कभी स्टोरियां पढ़ लिया करें, बड़े इंटरेस्टिंग होती हैं, और यूथ जोन की स्टोरियां हैं। फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे आपको कनेडा और स्पोर्ट्स की खबरें हैं, और फिर हमारे जो हैं वो स्पॉन्सर हैं, तो इन सबको प्यार दिखाएं। बिल्कुल नीचे आएंगे तो आपको इन नजर आएगा, है जी, वो इन जो है ना वो उसके अंदर इन होना है आपने, तो फिर आपको पता चलेगा ये क्या है, है? है? और एक परिंदा, इन जरूर होना है। फिर एक परिंदा सा भी बना हुआ है, एक वो एफ भी बना हुआ है। ये बड़ा गलत वर्ड है, इसको यहां से हटाओ भाई। बहरहाल जी, ये सारे जो है इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। हाँ, व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर, यस। तो मज़े भाई इन सारों से ना बड़े इंप्रेस्ड हैं, तो आपने भी अगर इंप्रेस होना है तो आप इन सब के ऊपर क्लिक करके इनके अंदर इन कर सकते हैं। इन करें और फिर आप देखिए आपको क्या क्या जो है इसमें जबरदस्त चीजें मिलेंगी। भाई हमारा फेसबुक पेज जो है उसको भी पसंद किया करें, उसमें बहुत सारी हमने वीडियोज डाली होती हैं, उन वीडियोज को पसंद करें, और वो जो हमारा कंटेंट होता है उसको भी पसंद करें आप। तो जरूर हमारा फेसबुक पेज जो है उसको भी करें, ठीक है जी, और जो है वो हमें इसके भी
तब भी जाया करो।
जाया करो भाई प्लीज,
तुम भी जाया करो, तम भी जाया,
हाँ तम भी जाया करो। राणा सलाउल्लाह हमारे कहते हैं ना, कहते हैं हाँ भाई तम तुम्हारा क्या मसला है, तम क्या कह रहे। बस मजदूरी, अब तो हम नहीं टिकट कटा सकते पाकिस्तान की। इंटीरियर मिनिस्टर है, वही कह देगा भाई आपने मुल्क के इंटीरियर में आपने आना ही नहीं है।
तुमने ही कहा था,
ये तुमने कहा था, तो बस आप यहाँ पे एंटर नहीं हो। अच्छा जी, अच्छा जी, देखो जी मैंने आज खबरें फिर अब ऐसे करके कर रही हैं क्योंकि माजिद भाई मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे खबरें नहीं देने दे रहे, ठीक है जी। चलो जी खबर करिए। अच्छा जी, बैंक ऑफ कनेडा का आपको बता ही दिया है माजिद भाई ने, माजिद भाई को तो बड़ा प्यार है ना बैंक ऑफ कनेडा से, सारी पॉलिसियां जो है वो मिल्क इनके साथ बनाते हैं, है जी। तो इन्होंने आज 100 basis points, तो हमने जो आपको कहा था कि 1% से बढ़ेगा तो 2.5% से ये जनाब इनकी ऊपर चली गई हैं, अब जो हैं इनके जो बेसिस पॉइंट्स हैं 100 basis points की वजह से 2.5% अब इनका इंटरेस्ट रेट टच कर रहा है। और अभी हम आपको बता रहे हैं, आज फिर हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि अभी जो अक्टूबर में आएगा वो फिर से ये करेंगे, और दिसंबर में जो हमने कहा था कि 4.5 से ऊपर जाएगा ये इंटरेस्ट रेट, वो अब जाएगा
इतना नहीं जाएगा,
3% 3% के थोड़ा टचिंग ऊपर। हाँ, तो ये लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 4 के पास ये पहुंचेगा ही, लेकिन वो है। तो वो कहते हैं जी, बैंक ऑफ कनाडा कहता है क्योंकि जो है ये मई का जो कंज्यूमर इंडेक्स जो रेट था वो 7.7% को टच कर रहा था, और ये जो है बहुत ज्यादा रेट बढ़ते जो जा रहे हैं उसके ऊपर आज लोगों के भी बहुत सारे कंसर्न आए हैं कि भाई अगर इतने चले गए तो फिर लोग जो है अपनी मॉर्गेजेस कैसे देंगे।
मॉर्गेजेस के अलावा इसके अंदर आप देख लें, आप आज ही की खबर है ये कि कैनेडियन फूड सप्लायर जो है उनकी जानिब से आया नोटिस जारी किया उन्होंने, ग्रोसरी जो है जितने भी ग्रोसरी है आपकी और फूड प्राइसेस की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है।
yes,
और इसके साथ साथ जो डेयरी फार्म है तो डेयरी कमीशन वर्किंग उन्होंने भी कहा साहब कि यहां पर भी आज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन तमाम की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं है मगर हर चीज की प्राइसेस जब ऊपर जा रही है तो
मुश्किल है। अच्छा, तो ये अब बैंक ऑफ कनाडा कहता है जी कि ये अब जो है 3% के ऊपर तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ 2023। हमें तो लगता है इसी साल के आखिर में हो जाएगा क्योंकि वो कहते हैं जी जीडीपी बहुत स्लो हो गई है, 3.5% पे आ गई है और इस साल के आखिर तक इसी पे रहेगी, लेकिन फिर 1.75% जो है उस पे जीडीपी होएगी जो है फॉलोइंग ईयर। हम इसको चाहते हैं कि 2024 के एंड पे ये अपनी जगह के ऊपर आ जाए, तो उसके लिए जो है हमने ये सारे किए और बड़ा ये अग्रेसिव
है। 2.5 years,
हाँ 2.5 years, यस एग्जैक्टली। तो उसमें तो लोगों का जूस निकल जाता
है। बट ये गवर्नमेंट तो अपनी जगह बैठी हुई है वो, मगर ये यू टॉकिंग अबाउट टू एंड हाफ ईयर्स। अभी जुलाई का महीना है और अभी आपने पूरा 6 महीने ये गुजारने हैं और फिर 23 एंड 24।
यस, तो ये इन्होंने आज कह रहे हैं कि जी अगस्त 1998 के बाद सबसे ज्यादा जो है ये इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं बैंक ऑफ कनाडा का, तो बस अल्लाह का ही हाफिज है इस मुल्क का। अच्छा जनाब, ट्रूडो साहब ने आज कहा है कि मैं जो है प्रोविंसेस के ऊपर आसानियां करने के लिए तैयार हूं, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज और ज्यादा देने को तैयार हूं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो सामने आना चाहिए। अच्छा, ये इस सिनेरियो में उन्होंने बात आज की है जो हम आपको बता रहे थे 2 दिन से कि प्रीमियर्स जो हैं वो अपनी मीटिंग चला रहे हैं वहां पे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, और उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसने हमें 22% हिस्सा देती है हेल्थ केयर के लिए, 35% पे ये लेके जाए। ट्रूडो साहब ने कहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों के ऊपर जो सूबे हैं फॉर एग्जांपल एंड टेरिटोरीज उनके ऊपर प्रेशर ईज कर सकता हूं, हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें हम न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, ये इनका रिजल्ट फिर सामने आना चाहिए। वो कहता है जी कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूं इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री जो आप लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली मिलता हूं प्रीमियर्स के साथ। आप खुद देख लें कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री में कब प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर्स को मिलता था, मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली मिलता हूं और ये जो गैप्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में इनको हम जो है, और ये जो क्राइसिस है प्रोफेशनल्स ना होने की वजह से, उन सबको हम देखने की हम यानी कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं।
मेन हेडलाइन छोड़ दी जो आज उन्होंने इंकशाफ किया है, जो ट्रूडो साहब ने इंकशाफ किया है कि I realize and I understand that Canadians are going through hard time.
Yeah, yeah. जी
what?
मतलब ऐसी थे रो रो के पिट पिट के थे, चुप ही उन कर गए, हमने तो अपने बाजू पूंछ लिए हैं क्योंकि ट्रूडो साहब ना सुन रहे हैं, दबा दब पैसा यूक्रेन को बस दे रहे हैं, कभी यूक्रेन कभी इधर कभी
यूक्रेन
उधर,
भी आज चपेट मार रहा है ना।
हाँ, वो तो रोज ही अब मार रहा है, वो तो रोज चपेड़े मारता है ना यूक्रेन ने, तो अब रोज इनकी जो है वो जो है जूता परेड और बेस्ती परेड वो कर रहा है इनकी, लेकिन इनको शर्म ही नहीं आ रही, ये मरे जा रहे हैं यूक्रेन के लिए। और मैंने तो इनको कितनी दफा कहा चलो जी मिनू थे गोली मारो, $1 मिलियन तुम मिनू नहीं देना, और दूसरों का तो सोचो ट्रूडो साहब, आप दूसरों का तो सोचो। आप कभी जी इस मुल्क से उठा के बंदे ला रहे हो, कभी यानी कुत्ते और बिल्ले तक तो आप उठाकर लाए हैं उधर से जो है अफगानिस्तान से, तो वो भाई तैयारे में आए हैं, तैयारे में फ्यूल पड़ता है, फ्यूल जो है वो उसके पहे हैं, वो पहे किसके हैं, वो हमारे पहे हैं, तो ये एडा तो जुल्म ना करो जी तुझी हूं, तो ये आप जो है वही मैंने हमने तो बड़ी दफा यहां पे कहा है कि ये जो बेचारे जिनके 2-2, 3-3 लाख अब जो रह गई हैं मॉर्गेजें, उनको आप हेल्प कर दो, उनकी मॉर्गेजें पे कर दो ताकि एटलीस्ट वो एक जो उनका डेट है उनके ऊपर से वो उनके ऊपर से चला जाए।
सही।
बच्चों की फीसें देखें माजिद भाई, या कॉलेज की यूनिवर्सिटियों की जो फीसें हैं वो देखें, यानी कि अगर किसी का बच्चा खाने पीने की चीजें देखें
ऑन अ डेली बेसिस
एसेंशियल
टाइम्स अ डे,
हाँ तो कौन जो है अब बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देख रही थी ऑस्कूल लॉ स्कूल जो है माजिद भाई, एक एक साल की जो उसकी जो वो फीस है, और ये दिस इज ओनली द फी, $25,000. अच्छा, ये सिर्फ फीस है, इसमें बुक्स शामिल नहीं है, इसमें अगर आप बच्चा अपने घर में भी रह रहा है तो वो बस के किराए इसके अंदर शामिल नहीं है, अगर वो डॉर्म में रहना है उसके पैसे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, $25,000 तो सिर्फ उसकी फीस है, राइट right? और ये है कनेडियन नेशनल्स के लिए, जो बेचारे कनेडियन नेशनल नहीं है और वो पढ़ने के लिए ऑसगुल्ड स्कूल में आएंगे तो उसका आप सोचें, दिस इज वन ईयर, दिस इज जस्ट वन ईयर। तो यानी कि जो कनेडियन नेशनल भी है जिसका बच्चा ऑसगुल्ड स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो एटलीस्ट जो है एक साल में $30,000 to $35,000 जो है एक साल का पे करेगा। तो अगर उसने लॉ करने का तीन साल का लॉ का है, तो आप सोचें कि $100,000 तो उसका सिर्फ उस बच्चे का तीन साल का ऑसगुल्ड का है, उससे पहले जो उसने चार साल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उसका आप खर्चा देखें। और आप जो है बड़े आसानी से कह देते हैं, ओ जी सारी दुनिया ने ओसेप लिया हुआ है। अच्छा जी ओसेप लिया है, अच्छा ओसेप क्या है, वो फ्री मनी है, वो वापस नहीं आपने करनी, बच्चे ने वापस करनी है ना। तो यानी कि आप कह रहे हो अच्छा जी पढ़ लो, हम तुम्हारे बाप के सर पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुमने जरूर मोड़ने हैं। यानी कि तुम अपनी जिंदगी ही लोन से शुरू करो जी। वो जो 22 या 23 या 24 साल का बच्चा है उसको आप कह रहे हैं जी तुम अपनी जिंदगी लोन से शुरू करो, है जी, क्योंकि हम बड़े अच्छे लोग हैं।
और जो जो मेडिसिन करने के लिए बाहर जाते हैं बच्चे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे आइलैंड्स वगैरह,
वो तो बेतहाशा एक्सपेंसिव है ना, क्योंकि वो तो दे विल ट्रीट देम एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
एक मंथ का आप बता रही हैं कि $25,000
एक साल का, एंड दैट इज जस्ट द फी।
वो वहां पर क्वार्टरली आपको पे करना पड़ता है, एंड दैट इज लॉट मोर देन $35,000 फॉर अ क्वार्टर,
बिकॉज दे आर ट्रीटिंग देम एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
यस
राइट,
3 months का, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वहां पर रहाइश, खाना पीना, ये करना वो करना, सारी चीजें, एंड दैट इज ऑल इन US funds।
यस राइट, वो तो सिर्फ US लेते हैं,
US funds। सो जस्ट इमेजिन दैट, यू नो यू टॉकिंग अबाउट ओवर वे ओवर $400,000।
यस एग्जैक्टली। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि 5 साल में वहां पे जाके आप अपना मेडिसिन कर लेते हैं, नॉट लाइक कनाडा के 10-10 साल यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। बट द थिंग इज के कितना वहां पे माँ बाप को पैसे देने पड़ रहे हैं और कितनी उनको अपनी ख्वाहिशें काट के। तो भैया आप ख्याल करो ना, ये जो आपके टैक्स पेयर हैं उनको आप ख्याल करो, उनके आप थोड़ा ना जी ना, उन्होंने तो करना ही नहीं ना, साढ़ा तो $1 million इन्होंने देना ही नहीं जी। तो ये जनाब इन्होंने आज बातें की हैं कि हाँ जी मैं बड़ा अवेयर हूं कि हमारे कैनेडियंस के ऊपर बड़ा क्राइसिस है। वाह जी वाह, क्या बात है, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जनाब, आज एक ट्रूडो साहब ने एक और अनाउंसमेंट की है, वो थे आज ऑन्टेरियो के जो लॉयलिस्ट टाउनशिप है उसके अंदर थे, और वो कह रहे हैं कि बेल्जियम बेस्ड यूनिकॉर एनवी जो है ये अब यहां पे पूरा साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। और आज उन्होंने कहा जी कि ये जो यूनिकॉर है ये 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रहा है, जिससे कि 1000 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, और ये सारे जो हैं कैथोड्स और प्रोसेसर मटेरियल्स और जो व्हीकल्स की बैटरीज हैं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरीज। तो वो कह रहे हैं कि ट्रूडो साहब ने कहा जी कि ना सिर्फ हम ये इनके अंदर हम जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके अंदर हम लीड ले रहे हैं, बल्कि इन चीजों के अंदर भी, सप्लाई चेन के अंदर भी हम लोग जो है वर्ल्ड लीडर बनते जा रहे हैं कैनेडा जो है। तो इन्होंने आज बड़ी खुशी का इजहार किया। तो भाई आप ऑटो इंडस्ट्री में ही खर्च करते जा रहे हैं, और भी दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर खर्च करें, 1000 जॉब्स जो हैं वो आप कर रहे हैं, उधर हो सकता है हजारों ज्यादा हुए दूसरी इंडस्ट्रीज में। बहरहाल जी अपने अपने हैं इनके फंडे हैं, तो अब देखेंगे क्या होता है। ऑन्टेरियो के अंदर जी जो डॉक्टर कायरोन मोर हैं, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, उन्होंने आज कहा है कि अब वो लोग जो 18 एंड अबव हैं उनको अब दूसरा बूस्टर भी, यानी कि चौथी डोज जो है कोविड-19 वैक्सीन की, वो मिल सकती है। वो कहते हैं एज ऑफ टुमारो 8 AM ये जो है डोजें देनी शुरू कर देंगे, तो आप अपॉइंटमेंट्स अपनी लेना शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन नहीं है तो आप जरा वेट कर लें फॉल तक का, और फॉल में आप ये जो है,
मगर ये एक चीज साथ साथ ये भी कहना मस्ट है कि 5 महीने का गैप होना चाहिए,
5 महीने का गैप।
लास्ट जो आपने कोविड-19 की जो
वैक्सीन ली थी,
विच इज थर्ड वैक्सीन,
थर्ड वैक्सीन,
तो वो उसके बाद 5 महीने का गैप होना चाहिए बीच में। और अगर जो आपको कोविड हो गया लास्ट 3 months में, सो यू आर नॉट एलिजिबल। तो लास्ट कोविड जो हुआ था आपको, दैट इज मोर देन थ्री मंथ्स
जी बिल्कुल। तो इस तरह से उन्होंने कहा जी कि 3 months आफ्टर इन्फेक्शन आप ये कर सकते हैं। तो बहरहाल जी अब चौथी डोज कौन लेगा, 3 डोजों से ही लोग जो है वो पागल हुए हुए हैं, तो ये चौथी लेके तो बिल्कुल ही इधर सारे ज़ॉम्बी फिर रहे होंगे इस मुल्क में। कनेडियन फूड सप्लायर्स वालों की जो, और कनेडियन डेयरी कमीशन की जो भी माजिद भाई ने रिपोर्ट दी है, उसके अंदर थोड़ा सा बस मैं ये ऐड कर दूं कि आज उन्होंने लेटर्स लिखे हैं ग्रोसरी स्टोर्स को, और खासतौर पर जो मिल्क है उसके ऊपर बड़ा वो है आ गया। वो कहते हैं जी सेकेंड मिल्क प्राइसिंग इंक्रीज जो है वो आ रही है, और ये 2 सेंट पर लीटर से ये ऊपर जाएगी, जिसका के मतलब है 2.5% सितंबर 1 से ये शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं जी कि इसके अलावा जो है ये इंक्रीजेस जो हैं आपको और भी ये नजर आएंगी सितंबर के महीने में, और चीजों की कीमत एज मच एज 5% तक ऊपर जा सकती है। और सीडीसी ने कहा है कि ये प्राइस के जो इंक्रीज हैं ये हम इन्फ्लेशन कॉस्ट के साथ जो है जोड़ना चाहते हैं, और इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि भई आप ये एवरेज नेशनल मार्केट इंक्रीज जो है उसको ये इसके अंदर डालें और उसको भी आप कंसिडर करें। यानी कि कहने का उनका ये मतलब था कि भई ये सारे का सारा जो प्राइस हाइक है इसका जो बोझ है ये आप हमारे ऊपर ना डाल दें, तो आप जो है ये लोगों को बताने की कोशिश करें कि भई ये सारा कुछ जो ओवरऑल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उसकी वजह से हमने ये की है। तो यानी कि कस्टमर, यानी जाहिर है कि जी बॉटम लाइन वही है कि कस्टमर जो है जी तुहानू ज्यादा पैसे देने पैणगे, बस ये इसकी है। वो बहुत घुमा फिरा के कि जी ये बताएं वो बताएं, भाई बताएं शताएं छोड़ें, बस बात यह है कि उन्होंने आज कह दिया प्राइसेस ऊपर जा रही हैं फूड की, बस प्राइसेस ऊपर
एवरीथिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग ग्रोसरी
से रिलेटेड डेयरी से लेके सब जितनी भी ग्रोसरी स्टोर में जो भी आपको मिलता है बस उन सब की प्राइसेस अब ऊपर हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मार्च 2020 में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, पेंडेमिक कभी शुरू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको सर्व देंगे। ठीक है जी, कनेडियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट प्रोग्राम ये शुरू किया था, और उसमें जो है इन्होंने कहा था जी $500 पर वीक देंगे मार्च 15 से लेकर सितंबर 26 तक अगर आपके जॉब्स नहीं है। तो आज सेंसस की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी 20.7 मिलियन कैनेडियंस जो हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, जैसा कि डाटा जो है स्टैट्स कनाडा ने भी पब्लिश किया था। इसमें शो किया जा रहा है कि कैनेडियंस की इनकम जो है वो 9.8% जो थी वो ऊपर चली गई थी। जाहिर है कि भाई आप पैसे दे रहे थे तो उनकी ऊपर जानी ही थी, वो चले गए थे। सिर्फ वो कहते हैं अल्बर्टा, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर ऐसी जगह थी जहां पे के लोगों की सैलरीज में कमी देखी गई थी, लेकिन हाउस होल्ड इनकम जो है जी वो कहते हैं 73,000 को टच कर रही थी। और वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट ने ये जो सारे ट्रांसफर किए थे लोगों को पैसे, तो ये ट्रांसफर जो थे इसकी वजह से जो लो इनकम रेट था वो नीचे आ गया था 11.1% से वर्सेस 14.4% इन 2015। इसी सेंसस में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आई हैं। वो कहते हैं जी कि कनाडा के अंदर जो कॉमन लॉ पार्टनर्स हैं उनके साथ अब ज्यादा लोग रहना चाहते हैं, अब शादियां नहीं करना चाहते हैं, एक तो शादियां बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, इन केस उनकी नहीं बनती है तो वो जो जायदाद का स्प्लिट होता है उसमें उनको जो है बहुत कुछ पैसे देने में। तो G7 में सबसे हाईएस्ट रेट कॉमन लॉ पार्टनर के साथ रहने का जो है वो है कनाडा के अंदर, और वो कहीं और नहीं है। और इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं सेंसस में सामने आई हैं जो आज उन्होंने जो ये रिपोर्ट आई है उसके अंदर इन्होंने शेयर की है। पियर्सन एयरपोर्ट से रिलेटेड आज ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसने आज कहा है कि जी हालत वहां पे, हाँ बिल्कुल झूठ है, वो कहते हैं जी हालत बहुत अच्छी हो गई है यहां पे और अब आपको कस्टम्स के ऊपर सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। आप आज ही फोन करके पूछ लो लोगों से कि भाई तुमको 15 मिनट लग रहे हैं, मतलब ये तुम दुबई एयरपोर्ट समझे हो है इन एंड आउट कर रहे हैं जी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी अब तो सिर्फ लोगों को 15-15 मिनट लग रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हमने 82% लोगों से पूछा है वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हम तो 15 मिनट में जो है फारग हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वेट टाइम अब रिड्यूस हो गया और हमने लोग बहुत सारे हायर कर लिए हैं, तो उसकी वजह से फटाफट लोग आते हैं और वो फारग होते जाते हैं। और ये जो, लेकिन अभी भी हमको बहुत सारे स्टाफ की जरूरत है, GTAA ने ये जो है ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटी वो कह रही है, और वो कह रहे हैं लेकिन ये जो क्योस्क और ई गेट्स हमने खोल दिए हैं इसने वेट टाइम्स को जो है बहुत कम कर दिया है। तो पायन मैं आपको कह रही हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सच नहीं है, टाइम उसी तरह लोगों का लग रहा है बल्कि खराब हो रहा है आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर। आप अगर फूल्स पैराडाइज में रहना चाहते हैं आप जरूर हैं। रॉजर्स कम्युनिकेशंस जो है जी उसने आज फिर से जो है बड़े माफी मांगी है अपने कस्टमर से, और इनके जो सीईओ है टोनी स्टेफेरी उन्होंने कहा है जी कि पांच दिन के लिए आपकी जो सर्विस का वो जो हमको वो था वो हम उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट करेंगे फॉर 5 डेज जो हमने ये आउटरेज किया था, नॉट वन, लग रहा था कि एक दिन का शायद वो कॉम्पेंसेट करेंगे। वो कहते हैं जी कि नहीं हम 5 डेज,
बहुत सारे लॉ सूट होने वाले हैं
इनके ऊपर भी,
दे आर वेरी लकी दे आर इन कनाडा नॉट इन अमेरिका,
वरना हो चुके होते अभी।
हाँ, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लॉ सूट होंगे इन पे क्योंकि इट इज नॉट ओके जी मैं पांच दिन का कॉम्पनसेट कर देता हूँ, कितना $5 दे दूंगा आपको, $10, $20, $25 दे दूंगा आपको, इट डजंट वर्क लाइक दैट।
बिल्कुल, लेकिन वो कंपनी ये कहती है ना, वो कहती है आप एक को हम $5 दे रहे हैं ना, हमारे तो लाखों ही हैं, तो हमें कंपनी को तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देना पड़ता है।
एक्सक्यूज मी, सो यू मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू
टू? हाँ जी, तो बस यही है ना, वो नहीं ना साइड देखते हैं, वो साइड तो नहीं देखते हैं कि हम पैसे बना कितने रहे हैं, हम दे कितने रहे हैं, उसकी बड़ी तकलीफ है ना।
इनके लिए आसान है क्योंकि ये अगर सिर्फ अभी एक जो लॉ सूट आया है वो एक बंदे ने मॉन्ट्रियल का है, वो यहां पर रहता है, वो सिर्फ 2 साल से उसने ज्वाइन किया था इनको, उसने $200 का डैमेजेस और $200 की जो है मेंटल व्हाटएवर दैट इज, तो वो फटीक के लिए उसने $400 उसने कहा कि आप मुझे वापस करें और सारे लोगों को $400 वापस करें, $400 भी देंगे तो ये बिलियंस, बट दे कैन रेज देयर प्राइसेस ऑफ व्हाटएवर फॉर डॉलर टू डॉलर व्हिच वी दे ऑलवेज डू एंड दे रिकवर देयर मनी।
यस दैट्स राइट, तो वो कह रहे हैं जी कि ये कॉम्पनसेशन जो है, बहुत सारे बिजनेसेस ने कहा जी कि हम बिल्कुल ये कोई कॉम्पनसेशन, कोई ग्रेट कॉम्पनसेशन नहीं है, बिकॉज वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू है जो तुम्हारी आउटरेज हुई थी, और ना तो हमारे क्रेडिट पेमेंट्स चल रही थी, ना तो हमारे डेबिट पेमेंट्स चल रही थी, और ना कुछ, तो ये जो है, तो कह रहे हैं जी हम दिन रात अब काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। एक तो ये जुमला जो है ना इधर, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, पता नहीं वो हार्ड है कि हार्डली है आज तक मुझे इनका समझ नहीं आया। जिससे भी बात करो ना, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, सर्विस कनाडा में बैठा है, कोई और किसी जगह पे बैठा है, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वो क्या मतलब है हार्ड का?
हार्डली,
हाँ हार्डली, वो बोलो वी आर वर्किंग हार्डली। हाँ जी, तो ये आपका हाल है। अच्छा जनाब, ये जो इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर की रेस है, ये बड़ी हॉट होती जा रही है। 11 जो थे होपफुल्स उनके साथ शुरू हुई थी, फिर 8 पे आ गई थी, अब 6 के ऊपर आ गई है, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहावी और एक्स फॉरेन मिनिस्टर जेरेमी हंट जो हैं वो फिर से निकल गए हैं। ऋषि सुनक के बेशुमार जो हैं वो स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये लीड कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जी बेइंतहा काबिल बंदा है ऋषि सुनक, इसको 88 कंजर्वेटिव मेंबर्स जो हैं ऑफ पार्लियामेंट उनकी इनको सपोर्ट हासिल है। पेनी मॉर्डॉन्ट जो है उसको 67 वोट्स हासिल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस को 50 वोट्स हासिल हैं, कैमी बेडनॉश को 40, टॉम टुगनडॉट को 37, सुइला ब्रेवनमैन को 32, और ऑल टुगेदर 358 कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स जो हैं वो उनके बीच में अब ये डिवीजन है कि किसको हम दें।
इंटरेस्टिंग शाहजी जी, कहते हैं 4 वुमेन एंड 2 मैन।
यस दैट्स राइट, लेकिन मुझे तो वैसे इसमें से जो सबसे स्ट्रांग लग रही है, मुझे तो लिज ट्रूज लग रही है, ये जो सबसे पहली, अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं, जो पहली वाली लेडी है लिज ट्रूज, मुझे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग, वैसे मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ये बनेगी। या क्योंकि लोग ज्यादातर इसको अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इसको असल में पसंद करते हैं लोग, इसके लिए कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है किसी के दिल में। ऋषि सुनक के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, जैसे अभी हमने कल बताई है कि जी मेरी तो दोस्तियां सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स के साथ है, कॉमन बंदा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो पाया ना, अगर कॉमन बंदा दोस्त नहीं है तो फिर आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कैसे बनोगे, है ना? आपको तो फिर कॉमनर की प्रॉब्लम ही नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ये इंतहाई काबिल है ये लड़का, बहुत, तो ही कैन स्टीयर द कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। तो काबिलियत के ऊपर जो है ना वो बात हो रही है। अच्छा जी, अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है, और अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो सोर्सेज हैं उनको बताते हैं कि जो इस्तंबुल में हम आपको बता रहे थे, तीन बड़े लोगों की ये जो हो रही थी मुलाकातें, एक तो रशिया की, एक जाहिर है कि टर्की तो होस्ट कर रहा था, तो इस्तंबुल तो है ना होना ही होना था, और उसमें रशिया और वो थे
ईरान
थे, तो ये सब लोग जो है उधर कर रहे थे, तो उसमें सोर्सेज ने अंदर की खबर दी है कि कुछ ब्रेक थ्रू आ गया है, और ये जो ग्रेन की बहुत सारी ये जो है मुश्किलें हैं ये अब हल हो जाएंगी। वो कहते हैं जी कि तकरीबन 22 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो है ऑसेडा का जो इलाका है यूक्रेन के अंदर उसमें फंसा हुआ है, तो वहां से जो है ये निकल के जा सकता है। इसके अलावा जो उस ग्रेन को पैदा करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब जो फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, वो वैसे तो चूंकि रशिया के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस, तो हर चीज रशिया की अंडर सैंक्शन है, लेकिन चूंकि फर्टिलाइजर ग्रेन के साथ रिलेटेड है, तो हो सकता है कि ग्रेन को भी बाहर जाने की इजाजत दी जाए रशिया से। तो वो कहते हैं जी अब इनकी एक या दो दिन में ये जो कुछ इन्होंने बैठ के रिजॉल्व किया है उसकी डिटेल्स जो है आ जाएंगी, क्योंकि इन सबकी सहमति हो गई है इसके ऊपर, रशिया की, यूक्रेन की, और इसके अंदर ना सिर्फ रशिया, यूक्रेन और टर्की और ईरान बैठे हैं, बल्कि इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जिनका कि ये कंसर्न है कि दुनिया के अंदर भूख फैल रही है। तो वो कहते हैं जी कि वो अब इसको एक दो दिन में अनाउंस कर देंगे कि डील जो है इसके अंदर क्या है। यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो है उनकी आज एक रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक 2/3 जो रेफ्यूजीज हैं यूक्रेन से वो वहीं पर रहना चाहते हैं जहां पे कि वो रह रहे हैं, यानी कि होस्ट कंट्रीज में ही रहना चाहते हैं, जैसे कि अब इसने भी कहा था इसने कनाडा ने कि आप दो साल के बाद जब आपके हालात अच्छे हो जाएं तो आप जा सकते हैं. अच्छा, इनके जो अब कैंप्स है ना विच आर अलोंग विद सम अदर कैंप्स, जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के भी यूएनएचसीआर के जो कैंप्स हैं उन्होंने और भी कैंप्स जो है अब इनके लिए भी लगाए हैं, यूक्रेनियंस के लिए भी. तो वो कहते हैं कि ये सारे लोग जिनसे कि हमने जाके बात की, अब जो अफ्रीकन्स हैं उनका तो कुछ पता नहीं है फ्यूचर का कि वो किधर जाना चाहते हैं, अपने मुल्क में जाना चाहते हैं या इधर ही रहना चाहते हैं. लेकिन यूक्रेनियंस कह रहे हैं कि हम होस्ट कंट्रीज में रहना चाहते हैं जब तक के हालात अच्छे नहीं हो जाते हैं. इसमें बहुत सारी औरतें और बच्चे जो हैं वो वहीं पे होस्ट कंट्री में रहना चाहते हैं, वो आगे नहीं जाना चाहते हैं. वो कहते हैं जी हमने तकरीबन 4900 ये जो यूएनएचसीआर के कैंप्स में लोग रह रहे हैं उनसे हमने बात की है, मोस्टली तो वो यूक्रेनियंस थे, कुछ अफ्रीकन डिसेंडेंट के भी लोग थे. तो वो कहते हैं जी कि हम चेक रिपब्लिक, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवेकिया में ही रहना चाहते हैं. लेकिन कुछ लोग, बहुत ही कम लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम अपने मुल्क वापस यूक्रेन जाना चाहते हैं. वो कहते हैं जी तकरीबन 5.6 मिलियन जो यूक्रेनियंस हैं वो अब यूरोप के अंदर हैं, 8.8 मिलियन लोग जो हैं वो अब इधर उधर दूसरे कंट्रीज में जो हैं वो क्रॉस करके जा रहे हैं. लेकिन 3.3% जो यूक्रेनियंस हैं, मिलियन यूक्रेनियंस हैं, वो कहते हैं हम वापस भी आना चाहते हैं अपने मुल्क में. तो ये आज इनकी रिपोर्ट है. यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन, उन्होंने कहा है ये जो अब चल रही हैं दोस्तियां जो रशिया, ईरान और जो ये टर्की ब्रोकर कर रहा है इनके बीच में, उस सिनेरियो में आज जेक सलिवन ने कहा है कि पुतिन साहब की ये जो सारी दोस्तियां और यारियां चल रही हैं ईरान के साथ और जो जो कोई इसको फैसिलिटेट भी कर रहा है ये दुनिया के लिए प्रोफाउंड थ्रेट क्रिएट करेगा. जेक सलिवन साहब का कहना है कि ये जो अलायंस डीप अपनी रशिया इन मुल्कों के साथ करता जा रहा है ये बिल्कुल जो है खतरे की घंटी है, क्योंकि यूएस ऑफिशियल्स जो हैं ईरान के ऊपर जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई हैं उनको बड़ा गौर से देख रहे हैं और वो ये चाहते नहीं हैं कि ईरान जो है या रशिया जो है वो आपस में वो करें, डील्स करें. जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि ईरान रशियन कुछ लोगों को, कुछ ऑफिशियल्स को ट्रेन करेगा और 100 ड्रोन्स भी इनको देगा. तो वो कहते हैं जी कि ये जो इनके बीच में चल रही है बातचीत ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ड्रोन्स ये ऐसे सिंपल साधारण से ड्रोन्स नहीं है, कुछ वेपन्स केपेबल भी हैं जो कि रशिया इनसे लेके ईरान से, यानी मैं हैरान हो रही थी कि ईरान में कितनी एडवांसमेंट है माजिद भाई कि रशिया उनसे ड्रोन्स लेना चाहता है. वो कहते हैं जी ये ड्रोन्स रशिया ईरान से लेके यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है. और वो कहते हैं जी कि ये जो टाइम है जिस पे कि पुतिन साहब ईरान का दौरा कर रहे हैं और तेहरान पहुंचे हुए हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका विजिट हम है और हम बड़े इसको गौर से देख रहे हैं और हम और देखेंगे आने वाले दिनों में क्या. तो लेकिन दुनिया के मुल्कों को उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ और रशिया के साथ कोई ताल्लुकात आप ना बनाएं. अल जजीरा की जनाब ये आज बड़ी इंटरेस्टिंग पूरी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आज उन्होंने फोकस किया है जो बाइडन साहब हैं वो जो अब दौरा कर रहे हैं मिडल ईस्ट से, आज से उनका दौरा जो है वो शुरू हो गया है. आज वो इसराइल में पहुंच गए हुए हैं क्योंकि हमने आपको बताया था 13 से 16 तक वो करेंगे, एक दिन के लिए बीच में से वो जाएंगे. अभी आज इसराइल में है, फिर कल वेस्ट बैंक में होंगे और फिर उसके बाद ये एक दिन जो है गुजारेंगे सऊदी अरेबिया में भी. तो ये अल जजीरा ने इनके सारा जो दौरा है उसके ऊपर इन्होंने जो बात की है और उन्होंने वो जो कमेंट्स दिए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन साहब ने उसको भी लिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन जो है रीजनल पार्टनर्स के साथ डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे बाइडन साहब और वो जो है ईरान के और चाइना के इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करेंगे. बाइडन साहब आज जब इसराइल में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जो इजरायली काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ जो बात की है कि भई ये रशिया की जो वॉर है यूक्रेन में इसमें बहुत सारा फूड का, एनर्जी का, ये सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स पैदा हो गए हैं. तो इनके ऊपर जो है वो अल जजीरा कहता है कि ये ज्यादातर इनकी बात करेंगे, लेकिन जाहिर है कि चाइना को भी ये नहीं छोड़ेंगे. ये बाइडन साहब हो सकता है कि चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इलाके में बढ़ता चला जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे. इसके अलावा बाइडन साहब की ये भी पॉलिसी होगी कि वो बताएं कि जो पीछे हो गया सो हो गया, ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक है और हम नेशन बिल्डिंग में और रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा हम बिलीव करते हैं और हम आपके साथ जो है दोस्तियां बनाना चाहते हैं. खासतौर पर टॉप व्हाइट हाउस ऑफिशियल ऑन मिडल ईस्ट ब्रेट मैकलम ने कहा है कि बेसिकली बाइडन साहब बताएंगे इन 3D फॉर्मेट कि जी वी आर रिटर्निंग टू बेसिक्स. जो अमेरिका है वो जो अपनी मरीज पॉलिसी है कि हम एलाइज के साथ खड़े रहते हैं और उनको छोड़ते नहीं हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे. वो कहते हैं जी कि बाइडन साहब ये भी बात करेंगे कि ईरान जो है यूएस का बहुत बड़ा एडवर्सरी है और इसलिए जो लाइक माइंडेड लोग हैं यानी कि जैसे सऊदी अरेबिया, फेर वही गल, लाइक माइंडेड जो पार्टनर्स हैं सऊदी अरेबिया जैसे, उनके साथ हम बात करेंगे कि पायन हम आपके पीछे खड़े हैं, पीछे तो सर आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स उनको बेचने हैं, तो बर जो है हम आपके साथ दोस्तियां बनाएंगे क्योंकि आपका भी दुश्मन ईरान है, मतलब बिला वजह ईरान उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि ईरान भी आपका दुश्मन है, हमारा भी ईरान दुश्मन है, पता नहीं क्या दुश्मनी की है ईरानियों ने इनके साथ, हैं जी अमरीका के साथ कोई बम नहीं मारा आपके ऊपर, बयान की हो गया तो जरा ठंडा पानी पियो। बहरल जी वो कहते हैं नहीं जी ईरान जो है ईरान बड़ा एडवर्सरी है और हमने अपने रीजनल पार्टनर्स को यही बताना है कि ईरान के साथ जो है आप दोस्तियां ना करें, इसके अलावा हमने ये भी रीजनल पार्टनर्स को बताना है कि हमको जो अब्राहम अकॉर्ड्स है उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, इसराइल के आप सारे पीछे खड़े रहें, अरब कंट्रीज को हमने कहना है, इसराइल को नहीं कहना कि तुम अरब कंट्रीज के पीछे खड़े हो,
हाँ जी।
सऊदी अरेबिया को और अरब कंट्रीज को कहना कि तुम इसराइल के पीछे खड़े हो हैं, उसको सपोर्ट करो, इसको स्ट्रेंथन करो अब्राहम जो अकॉर्ड है उसको, और आपने ज्यादा चाइना के साथ दोस्तियां नहीं बनानी है, ये भी हमने इनको कहना है।
ठीक हो गया,
ठीक है जी,
ठीक हो गया,
ठीक है बस जी, चलो जी। ए फिर जनाब आज सारी कहानी इन्होंने पहले ही सुना देती है कि बाइडन साहब ने क्या गल्ला करनी है जी, तो ये तो हमें पता ही था, बहरहाल चलो अब आपने आर्टिकल लिख के बता दिया तो हमें और ज्यादा हम हशियार हो गए हैं, थैंक यू। ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है जी जिसका जिक्र माजिद भाई ने भी थोड़ी देर पहले किया था ना कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, ये बेसिकली जो है ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट जो है ये छापी है और उसने कहा जी कि बेतहाशा 4 decade high ये जनाब है यहां पे अब इन्फ्लेशन, और वो कहते हैं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है जिसको के सीपीआई बोलते हैं 9.5% पिछले साल से जो है वो बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग ने ये सारी जो रिपोर्ट है ये उठाई है जो यूएस का लेबर डिपार्टमेंट है उसका जो डाटा आज सामने आया है उसके बेस पे की है, उन्होंने कहा जी कि जो इन्फ्लेशन है 1.3% जो है लास्ट मंथ से भी और ज्यादा बढ़ गई है और 2005 से ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका में देखने में आ रही है, हाई गैस प्राइसेस, शेल्टर, फूड और ये सब चीजें जो हैं ऊपर जाती जा रही हैं, और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रोजेक्ट अब अमेरिका में कर रहे हैं कि 1.1% का जो राइज आया था फ्रॉम मई 8.8% ईयर ऑन ईयर को इंक्रीज को वो इंडिकेट कर रहा है। इसके होते हुए S&P 500 इंडेक्स जो था वो बहुत ही इट ओपन रियली लो और उसके ऊपर जो है ये सारी आज बड़े फिर से कंसर्न आए हैं, लोगों ने आज फिर से बड़ा बैश किया अपनी गवर्नमेंट को कि $7 billion आप जो है क्यों आप दे रहे हैं यूक्रेन को जबकि आपकी अपनी हालत खराब है, और जैसा कि हम कह रहे हैं मैं और मजद भाई के रिसेशन हर हाल में आएगा अमेरिका में, तो वो भी लोगों को अब नजर आना शुरू हो गया। अच्छा जनाब ये जो इंटरव्यू जिसकी के अभी जिक्र कर रहे थे आरफा बाजी, वो कल मैंने भी देखा CNN के ऊपर जॉन बोल्टन साहब का, ये इनका CNN पे इंटरव्यू चल रहा था जेक टैपर के साथ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन एन एक्सट्रीमली अनयूजुअल कन्फेशन जो है जॉन बोल्टन जो कि एक्स यूएस एम्बेसडर थे टू यूनाइटेड नेशंस और फॉर्मर व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, उन्होंने ये ओपनली कल CNN के प्रोग्राम में कन्फेस किया है कि हमारी यूएस की गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज में कू डिटा जो है वो प्लान करती रही है, यानी कि रिजीम चेंज करती रही है। आज से पहले ये लोग करते थे लेकिन इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया। ये आदमी जिसने के हाईएस्ट लेवल पे काम किया जो कि अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था,
अभी जब बुक
अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने कुछ थोड़ा सा जिक्र किया क्योंकि बहुत ही पोक किया उसने जेक टैपर ने, उसने कहा बताएं बताएं कहां चेंज किया, उसने कहा जैसे कि हमने अब उनको शायद समझ आई कि मैंने बहुत बड़ा कन्फेशन कर दिया, कहते हाँ जैसे कि हमने वो किया था वेंजुएला में किया था, लेकिन वेंजुएला का जो लीडर है जुआन गाइडो उसको हम लाना चाहते थे निकोलस मडुरो के अगेंस्ट, जिसको कि निकोलस मडुरो ने कहा था कि तुम लोग इललेजिटिमेटली सारा काम कर रहे हो, तो लेकिन वो तो जरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हमने जो जैसे कि वो किया था इरानियन जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दक को हमने 1953 में ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी, वियतनाम वॉर थी, इन्वेजन ऑफ इराक था, अफगानिस्तान में था, तो इस तरह का। तो उसने कहा नहीं नहीं ओवरथ्रो आपने कैसे की गवर्नमेंट्स वो आप बताएं, उसका फिर इसने जवाब नहीं दिया जॉन बोल्टन ने ना, बरल मतलब है जिक्र तो सारा ही कर दिया उसने कि हमने ये किया है जी ये कुछ किया। अच्छा अब डिकन्स ओले जो हैं बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि ये हाईएस्ट पोजीशन पे इस आदमी ने यूएस गवर्नमेंट में इंक्लूडिंग यूएन एम्बेसडर ये रहा हुआ है अमेरिका का, तो अगर ये ऐसे खुलेआम आके क्या बता रहा था, बोस्ट कर रहा था, सच बोल रहा था या क्या बताना चाह रहा था कि हम जो हैं अमेरिका का किरदार दुनिया के अंदर क्या है। मार्क ओवन जोन्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मिडल ईस्ट स्टडीज इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज एट हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी कहा है जी कि ये न्यूज और ये कन्फेशन इतना कोई बड़ा है कि सिर्फ इसको CNN को ही नहीं कैरी करना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं अर्ज करता हूं ईच एंड एवरी दुनिया का जो बड़ा अदारा है कि वो इस इंटरव्यू को छापे और वो लोगों को बताए कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जो उनकी रिजीम चेंजेस में कैसे इन्वॉल्व होती हैं। तो और ये तो कोई अननोन बात नहीं है, उनके अपने अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट वगैरह ने हजारों ही इस तरह की स्टोरीज की हैं। लंदन का जो गार्डियन है, BBC है, उन्होंने बताया कि किस तरह इनको ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूके को फ्रांस को जब भी कहीं पे कोई जैसे अब अफ्रीकन कंट्रीज में ऑयल राइट्स लेने होते थे तो कैसे इनकी कंपनियां जो कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट तो को भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये कॉरपोरेट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये उधर जाके रिजीम चेंज करते थे ताकि उनको अपने फेवर के जो हैं वो मिले, सारे जो है फैसले मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो ये जो है अब इस खबर ने आज बहुत ज्यादा जो है खलबली मचाई है। रॉयटर्स की एक खबर है जी, रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं रोनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने जनाब स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दी है और बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां पे। उसकी वजह यह है कि हमने आपको कल बताया था कि प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्षे जो हैं वो भाग के मालदीव्स चले गए हैं और जो प्रेसिडेंट के मीडिया सेक्रेटरी हैं डायनो गुलम्बेज, उन्होंने आज कहा है कि ये इमीडिएटली इन इफेक्ट है कर्फ्यू जो है, कोई भी अब नहीं जा सकता और ये इसलिए भी इनको कर्फ्यू लगाना पड़ा है कि ये जब खबर आई है कि राजापक्षे साहब भाग गए हैं मुल्क से तो कोलंबो के अंदर लोग जो हैं वो बेतहाशा जमा हुए और उन्होंने आवाजें लगाई गोटा थीफ, यानी कि गोटाबाया राजापक्षे उनका नाम है, तो गोटा थीफ, और उन्होंने कहा जी कि इसी तरह हजारों ही लोग जो हैं वो PM ऑफिस के अंदर भी गए और वहां पे उन्होंने जो है मोर्चे निकाले। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा श्रीलंका के अंदर हंगामे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हंगामे बढ़ गए हैं। अच्छा, अब जब ये खबर आई है तो आपको बताया ही था हमने कि ये नेवी के उस पे अड्डे पे रह रहे थे, ठीक है जी, वहां से फिर काजी के वो जरा एयरपोर्ट गए हैं, भाई क्या करने गए हैं एयरपोर्ट। अब जब वहां पे आज जो है वो सारी खबर आ गई है कि वो ऐसे ही नहीं गए थे जो कि हम समझ रहे थे कि मिलिट्री के अंडर कंट्रोल है तो मिलिट्री इनको कंट्रोल करेगी, जी नहीं, मिलिट्री ने इनको कंट्रोल नहीं किया, मिलिट्री ने इनको फैसिलिटेट किया। इनकी श्रीलंकन एयरफोर्स जो है उसने ये जो है गोटाबाया राजापक्षे साहब जो हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट, इनको भागने के लिए तैयारा पेश किया। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी हिम्मत क्या किसकी थी, किसी ने इनको फोन किया है, इनको दबाया है, इनको क्या किया है। मीडिया के अंदर जो आज रिपोर्ट्स आई हैं वो कहते हैं जी कि इनको इंडिया से फोन आया है, इंडिया ने इनको दबाया है और इंडिया ने कहा कि इस आदमी को फौरन निकलने दो क्योंकि ये इंडिया के बड़े दोस्त थे। अब इसके ऊपर इंडिया बड़ा भड़क गया है। इंडिया की जो हाई कमीशन है वहां पे श्रीलंका में, उन्होंने कहा जी कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसलेस है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बातें हैं, हमने कोई फैसिलिटेट नहीं किया इसको भागने के अंदर, तो इसलिए इंडिया का नाम लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो हमने कुछ भी नहीं किया एंड न्यू दिल्ली हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू नो हिम फ्लीइंग अवे फ्रॉम द कंट्री। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय वंदना मेनन और इनकी जो हेडलाइन है स्टोरी की वो है कोलकाता इज इंडियाज न्यूएस्ट बिगेस्ट स्कैम जोन, पुलिस यूट्यूबर्स माइस कांट शट इट डाउन। अच्छा जी, अब ये स्टोरी क्या है, वो स्टोरी ये है, वो कहते हैं जी एक पुलिस वाला भी है और एक बेचारा इंजीनियर है जिसका के नाम उन्होंने कहा है प्रवीण प्रकाश है, जो कि बड़ा ही टॉप वो ये जो साइबर सिक्योरिटी का वो यानी कि जिसको चीता समझा जाता है ये वो है, और एक पुलिस ऑफिसर है वहां पे कोलकाता का बहुत टॉप नॉश, वो अब ये सारा स्कैम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे चला रहे हैं जिसको कि उन्होंने नाम दिया है जमतारा, यानी जमतारा ऐसे उन्होंने नाम दिया है कि ये लोगों को फंसा के, और ऐसा तरीका इनको आता है ये कि ये लोगों को कहते हैं कि जी ये आपको कॉल, वो जैसे यहां पे आती हैं सर्विस कैनेडा की कि पैसे ना दिए तो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कहते हैं जी ये उसके अंदर बड़े ये तेज है, वो कहते हैं जी थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो इनको क्रैकडाउन इनको करने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर, यानी कि पुलिस वाले एजेंसियां और वॉर लोग और फिर जो शिकायतें आती हैं बाहर से। लेकिन इनको जैसा कि उसने अपने हेडलाइन में ही जिक्र किया है कि माइस तक भी, माइस तो वरना वो कुतर दे आपकी तो वो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, कहते हैं माइस भी इतना इनका जो है ये स्कैम का सिस्टम तगड़ा है कि उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी इन्होंने, और ये कहते हैं जी अब ये इंडिया के अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री होती है ना, ये भी एक स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। और इसकी आप वर्थ देखें 3,000 करोड़ को टच कर रही है ये इंडस्ट्री। आप सोचें जरा स्कैम्स की, ये स्कैम्स की हम बता रहे हैं। वो कहते हैं जी ये करते क्या हैं, ये जो स्कैमर्स कोलकाता में बैठे हुए हैं वो करते क्या हैं, क्योंकि ये इधर जो है आपको, वो कहते हैं जी कि हर किसी को जो भी कोई बाहर की दुनिया में भी बैठा हुआ है उसको भी एक फोन कॉल तो जरूर आई होगी। यहां पे इन्होंने कहा जी कि आपको भी कॉल आती होगी और वो कहते होंगे कि आपके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आने वाला है, इतने पैसे। अच्छा ये करते क्या है, अच्छा वो कहते हैं जी तरीका क्या है, कहते हैं पहले तो ये आपको बताते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से या अमेजोन से या नॉर्टन से मैं बोल रहा हूं। नॉर्टन का आपको मैं डाल देता हूं एक मैलवेयर डाल देता हूं फ्री ऑफ चार्ज, कोई बात नहीं है, आप हमारा कंप्यूटर या माइक्रोसॉफ्ट का ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूं, या अमेजॉन से आप चीजें मंगवाते हैं ऑनलाइन तो मैं, हम आपको ये जो है एज एन अप्रिसिएशन एज अ गुड कस्टमर हम आपको ये चीज भेज रहे हैं, तो आप अपना ईमेल हमें बताइए, हम आपको वो जो पैकेज का नंबर और वो डिटेल्स होंगी वो हम आपको भेज दें। वो कहते हैं जी जैसे ही आप उनको वो सारा कुछ देते हैं वो आपके सारी उस ईमेल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, क्योंकि वो फिर उसमें आपके वो ट्रैक्स बना लेते हैं ना आपके नाम के ऊपर, फिर वो आपके नाम पे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, आपका जो पासवर्ड होता है उसको क्रैक कर लेते हैं और आपके पैसे चीजें सब ले लेते हैं। कहते हैं ये इनका इतना सोफिस्टिकेटेड कोई सिस्टम है, और इसको वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी ब्लू स्क्रीन है ना, तो ये अब ब्लू स्क्रीन डेथ ये बन गई है ये बिल्कुल, और ये जो अननोन आपको इस तरह के आते हैं कि आपने ये जीता है ये जीता है ये जीता, तो वो कहते हैं जी ये कोलकाता जो है इसके अंदर बहुत आगे चल रहा है, सारी दुनिया को लीड कर, मतलब आगे अपने आगे लाया है दुनिया, आगे लाया इन्होंने अपने, है जी। तो वो कहते हैं जी कि इसके अंदर पुलिस जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती, बड़े बड़े पुलिस ने भी हैकर्स बिठाए हुए हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर, ना वो कुछ कर सक रहे हैं, या बड़े कोई चीते हैकर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सक रहे जो इंडियन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उनसे 4 दर्जे आगे चल के काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है जी, और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के बीच में जो फाइनल स्टेज का अग्रीमेंट है जिसकी वजह से $6 बिलियन पाकिस्तान को जो है वो अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के अंडर मिल सकते हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने बेतहाशा पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर सख्त किस्म की जो है वो शर्तें लगाई थी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एनर्जी टैरिफ्स डाले थे और चीजों की कीमतें बहुत बढ़ा दी थी, क्योंकि पाकिस्तान की हालत यह हो गई थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो बिल्कुल डिप्लीट कर रहे थे, तो इन्होंने जो कुछ भी बातें उन्होंने शर्तें दी थी वो इन्होंने मान ली हैं। तो एज अ रिजल्ट अगस्त के महीने में $1.2 बिलियन की जो है इनको फर्स्ट ट्रांशें मिलेगी। वो कहते हैं जी IMF ने अपना जो है ड्राफ्ट मेमो ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो शेयर किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको जो है जो जो कुछ बजट 2022-23 में इनको चेंजेस करने को कही थी इन्होंने की है, तो एज अ रिजल्ट अब इनको मिलेगा। MQMP और PPP वैसे तो आपको सेंटर में बड़े भाई भाई बने मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत ज्यादा अब ठन गई है। उसकी वजह क्या है, कराची, उसकी वजह कराची और जो रीसेंट जो फ्लड्स थे वो है। इसके अंदर जो PPP के जो हैं चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह और जो MQMP के जो लीडर्स हैं उनके बीच में आज काफी जो है तकरार हुई। जो मुराद अली शाह जो हैं वो कहते हैं जी कि हमने चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन मुराद अली शाह का साहब का ये सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल, अगर कोई मेट ऑफिस में है तो मुझे जरा समझाए। वो कहते हैं जब शॉर्ट स्पेल ऑफ टोरेंशियल रेन्स होती हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इंटरमिटेड रेन्स जब एक महीने तक होती रहें तो तब जो हैं वो स्ट्रीट्स नहीं भरती, स्ट्रीट्स जब उसके बाद कॉन्स्टेंटली और कितने दिन तक चलती रहें तो फिर, तो भाई पैन की कहना चाहते हो, एक महीने में जब रेन होएगी तो तब स्ट्रीट्स भरेंगी या वैसे थोड़े थोड़े दिनों में पानी आता रहेगा तो भरेंगी, भाई आप क्या कहना चाहते हो। तो अब कुछ समझ नहीं आई उनकी बात की, तो जी ये उन्होंने इस तरह की कोई बात की है। तो वो कहते हैं जी कि ये 232 मिलीमीटर रेन, ठीक है ये हम आपकी बात मानते हैं, ये हुई है और तीन घंटे के अंदर ही 127 mm रेन थी और उसकी वजह से जो है ये बड़ी मुश्किलात हुई। MQMP कहती है कि नहीं ये तुम्हारा मिसमैनेजमेंट है और तुम लोगों ने ठीक तरह से चीजों को चलाया नहीं है, तुम 30 साल से सूबे को जो है वो चला रहे हो और उसके अंदर आज तक तुम लोगों ने पानी के निकलने का कोई सिस्टम नहीं डाला हुआ है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, जिसके ऊपर जो बाकी के मिनिस्टर और लोग थे वो कहते हैं जी ये तो फ्लड जब दुनिया सारी में ही आते हैं, खाली पाकिस्तान में नहीं आते, तो इसलिए हमने अच्छी नहीं करनी हालत अपने।
मगर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ना, इतनी हाँ बड़ा जी, हाँ इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास सिटी है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए।
अच्छा जी, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि थर्ड क्लास सिटी हो जाए वर्ल्ड क्लास से, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पायन लगे रहो तुझे। हाँ जी, अच्छा जी, ये अच्छा जनाब PTI जो है उसने अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको आज फिर से मूव किया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो 20 लोग MNA जो थे इसके सॉरी MLA थे जो पंजाब असेंबली के अंदर, उसमें उनको आपने हमने डी नोटिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स जजमेंट कि वो जो हैं अब नहीं कर सकेंगे और अंडर आर्टिकल 63F ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो अब नहीं लड़ सकेंगे, जिन्होंने के पहले शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था पंजाब का। आज फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने आज फिर से कहा है ECP को कि भई ये जो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी और आप इन मुश्किलों को जरा देखने की कोशिश करें, आप अगर इस तरह से हरकतें करेंगे तो मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन आएगा। PTI की गवर्नमेंट जो है उसने ऑलरेडी लोगों को इतना एम्पावर कर दिया कि उनको अब गलत और सही जो है वो समझ में आ रहा है, तो आप भी ये जो पॉलिटिकल एलीट है मुल्क की ये भी समझें और आप भी ECP वाले भी समझें, आप लोगों को नहीं दबा सकते हैं, इस कंट्री को लोगों ने चलाना है। और आप श्रीलंका का हाल देखें कि किस तरह लोग जो हैं सारे मोर्चे निकाल के वो सारे जो हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गए हैं, तो आप भी चाहते हैं कि इस मुल्क का वही हाल हो, अगर आप नहीं चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल पैलेसेस तक लोग पहुंचे तो फिर आप इस मुल्क में लोगों की मर्जी जो है उसको सुने।
आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट रेफरेंस टू श्रीलंका, दिस इज द फर्स्ट टाइम समबडी सम ऑफिशियल्स या कोई लीडर ने श्रीलंका का हवाला दिया हो, वरना तो वहां तो श्रीलंका का तो नाम ही लेना चाहते हो कि लोगों को पता नहीं लगे कि वहां क्या हो
क्या हो रहा है। हाँ जी, चीफ मेट्रियोलॉजिस्ट जो हैं पाकिस्तान मेट ऑफिस के डॉक्टर सरदार सरफराज, उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर और ज्यादा बारिशें आएंगी, 60 mm टू 70 mm इन द नेक्स्ट 3 to 4 days और आएंगी। और सिंध के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जी, आज इनका भी बड़ा फनी जुमला आ जाया है, शर्जील इमाम मेनन साहब, वो कहते हैं जी 90% ऑफ द सिटी जो है कराची का उससे पानी हमने ड्रेन कर दिया है, सिर्फ 10% रह गया है जो ठीक करने वाला है। तो पायन लोग तो नहीं ये कह रहे हैं शर्जील मेमन साहब, पता नहीं आप किस इलाके में, शायद आप पंजाब में बैठे हैं, आपको पता नहीं है सिंध का क्या हाल है। अच्छा जी, है तो वो कहते हैं जी कि अभी तक लोगों का वहां पे एक्सपर्ट्स का कहना कि 18 लोगों की तो इस पानी की वजह से डेथ हो गई है, इना लेवल इना लहरा जो, तो वो कह रहे हैं जी कि अभी भी वो कहते हैं हाँ जी अब क्या करें, 342 mm अगर बारिश होगी, लेकिन 90% ऑफ द सिटी हमने क्लीन कर दिया, बिल्कुल पानी निकाल दिया वहां से। अच्छा जी, पता नहीं आप कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा जी, PMLN की जो वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने इमरान खान को आज कहा फितना खान, उन्होंने कहा फितना खान जो है इस मुल्क के अंदर जी पैक लाया था, मेरा बाप सी पैक लाया था और ये जी पैक लाया था, जी पैक है गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इमरान खान लेकर आया है, उसका मतलब ये है कि ये सारा पैसा जो है लूट लूट के ये इसके बनी गाला के रेजिडेंस में जा रहा था और इसमें इसकी जो बीवी थी बुशरा बीवी वो इसमें शामिल थी और पंजाब को बर्बाद करने के लिए तैयार थी और उसकी जो सहेली थी फराह खान, ये दोनों मिलके जो है किकबैक्स ले रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम बड़े आपसे प्यार करते हैं और हम आपकी मुश्किलें खत्म करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है लोगों का और आप सून देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो माफ कर दिए जाएंगे उन लोगों के लिए जो 100 units यूज कर रहे हैं। भाई आप ना प्राइम मिनिस्टर हो ना चीफ मिनिस्टर हो, आप कैसे ये बयान दे रही हो मैडम, आप कैसे दे रही हो, तो अभी आप देखना इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी और 17 जुलाई को आप देखेंगे कि शेर फिर से गरजेगा, लायंस विल रोर, वो कह रही है। और ये जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो ये जैकल लेकर आया था उसको हम खत्म कर देंगे, तो आज तो बड़े नेम्स बुलाए हैं,
मादरे मिल्लत हैं ये।
ओह माय गॉड,
शी डजंट नीड एनी सीट।
अच्छा, सेनेटर जैक रीड, अगर आपको इनकी हिस्ट्री पता हो जैक रीड साहब की, इंतहाई ये एक जो है वो इन्फ्लुएंशियल US गवर्नमेंट के अंदर हमेशा ही ये बंदे होते हैं, US सेनेट आर्म्स सर्विसेज कमेटी के अभी भी जो हैं ये हेड हैं, चेयरमैन हैं। इनकी मुलाकात जो है जी आज जो पाकिस्तान के एम्बेसडर मसूद खान साहब से हुई है वहां पे USA में, और इन्होंने कहा जी कि जो सेनेट हॉट बिल्डिंग है वहां पे अमेरिका में, और उन्होंने कहा जी कि हमारा पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, मैंने पाकिस्तान को बड़ी दफा विजिट किया है और हम दोनों जो कंट्रीज हैं बड़ा क्लोज कोऑपरेशन जो है खासतौर पे डिफेंस कोऑपरेशन हम एंजॉय करते हैं और हम पाकिस्तान की जो डिफेंस की नीड्स हैं उनको पूरा करते रहेंगे क्योंकि हमारा बड़ा प्यार है आपके साथ।
बहुत प्यार है जी।
ISPR की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के डिफरेंट इलाकों में दो डिफरेंट इंसिडेंट्स में 10 टेररिस्टों को मारा है। इसके अंदर एक जो लांस नायक इस्लामुद्दीन 34 ईयर्स उनकी एज थी, खैबर डिस्ट्रिक्ट से थे, उनकी डेथ हो गई है। अलबत्ता जो है वो कहते हैं हमको ISPR की इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इनको इंटेलिजेंस बेस्ड एक रिपोर्ट मिली थी जिसके ऊपर इन्होंने फिर ऑपरेशन किया था और इन लोगों को मारा और फिर इनसे रिकवर किए वेपन्स और एमिनेशन भी। एंड जनाब इमेजिन ब्रैडली कूपर आजकल किसको डेट कर रहा है, किसको कर रहा होगा? सोचें
कोई होगा, मतलब कोई तो
कौन होगा, हम शादिया मलिक ना कह देना। अच्छा जी, ब्रैडली कूपर जो आपको पता है हिलरी क्लिंटन की एक्स एड थी, उनको जनाब कर रहा है डेट हुमा एब्दीन। आपको पता है ना ये हुमा एब्दीन कौन है? तो ये हुमा एब्दीन को कर रहा है। तो ये जो है हुमा एब्दीन वैसे भी बड़े एक जो है पॉलिटिशियन बड़े के साथ, खैर वो उसको बड़ा डिस्ग्रेस किया गया था, बड़ी वो गलत चीजों में शामिल था, एंथनी वीनर उसकी ये वाइफ थी, फिर इन्होंने छोड़ दिया था। तो वो कहते हैं जी कि इनको, इन दोनों को, कूपर और एब्दीन को एना विंटर जो है उसने, जो एडिटर इन चीफ है वोग मैगजीन की, उसने बुलाया है और उसने कहा जी इन दोनों को कि भई तुम लोगों को जो है वो डेट करना चाहिए, यू आर द राइट फिट। और इन्होंने अपना जो अभी तक रिलेशनशिप था बड़ा हशहश रखा हुआ था लेकिन अब ये सामने आ गया है। और आपको पता ही है कि ब्रैडली कूपर जो है पहले डेट कर रहे थे एक्ट्रेस डायना ऑग्रन को लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं और अब एब्दीन को कर रहे हैं। तो आज ये बहुत बड़ी बेज बनी है। वाह जी वाह, क्या बात है। हमारे पाकिस्तान के जो बहुत सीनियर और जबरदस्त किस्म के स्टार एंड यूज टू बी अ वेरी हैंडसम मैन व्हेन ही वाज यंग, ही हैज डाइड, जमाल साहब जो हैं ही हैज डाइड इन जापान। वो काफी दिनों से बीमार थे और बड़ी बुरी शेप में थे, उनके दोनों लंग्स जो थे वो पूरी तरह से क्लैप्स कर गए हुए थे। कुछ दिन पहले उनके कुछ लोगों ने उनसे, जो दोस्तों यारों में थे, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन दे फाउंड आउट कि वो बात भी नहीं कर सक रहे हैं। तो आज उनकी फैमिली ने बताया है वो इलाज के लिए जापान गए हुए थे तो वहां के एक हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन। एंड जनाब शाहरुख खान साहब के जो बेटे हैं आर्यन खान को फाइनली उनको जी उनका पासपोर्ट दे दिया गया है। मुंबई कोर्ट ने आज कहा कि भाई इनको पासपोर्ट दे दो। ये जो इनका पासपोर्ट था वो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के पास था, आपको पता ही है कि ये लास्ट ईयर क्रूज ड्रग्स केस में इनको पकड़ा था और इनको कुछ अरसा जो है जेल में भी रखा था। उसके बाद इनको क्लीन चिट दे दी गई थी कि इनके पास से जो है इनका या कोई कनेक्शन नहीं है और इनको फिर बेल दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में और अब इनको जो है पासपोर्ट भी दे दिया गया। तो नाउ ही कैन ट्रेवल अब्रॉड। पाकिस्तान जो है आपको पता ही है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है श्रीलंका पहुंची हुई है लेकिन आज तो वहां पे कर्फ्यू भी लग गया है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। तो वो जो दो टेस्ट खेलने के लिए गए हुए थे अब दैट इज इन डॉल्ड्रम्स, पता नहीं है कि अब ये खेल सकेंगे आपस में कि नहीं।
आई डोंट थिंक सो।
हाँ, अब नहीं खेल सकेंगे। वो कह रहे हैं जी कि ये स्टार्ट होना था जुलाई 16 से लेकिन PCB के सोर्सेज के मुताबिक द मैचेज आर ऑन स्केड्यूल, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लेकिन एक मुसीबत आ सकती है श्रीलंका के ऊपर इन हालात के ऊपर कि ये कह रहे थे कि हम ये तीन कंट्रीज मिलकर कर रहे थे ना, तो सॉरी दो कंट्रीज मिलकर कर रहे थे ना पहले एशिया कप 2022 श्रीलंका एंड इंडिया, तो अब लग नहीं रहा है कि ये कर सकेंगे। तो हो सकता है कि सोर्सेज का कहना है कि ये राइट्स श्रीलंका से बांग्लादेश पे चले जाएं। तो क्यों भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही है, हैं जी, व्हाट इज दिस। चलो बहरहाल वो कह रहे हैं जी ये शायद क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने एक रिक्वेस्ट डाली है तो हो सकता है ये वहां चले जाए, तो ये जरा जनाब मुश्किल हो सकती है। एंड जनाब क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है उसने कहा है कि जो इनकी 3 मैच बायलैटरल ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया से होने वाली थी नेक्स्ट जनवरी से, वो कह रहे हैं अब नहीं होगी क्योंकि ये अपने घर की T20 लीग जो है जो 2023 के स्टार्ट में हो रही है उसको ये ज्यादा जोर देना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी कि जो हमारी टीम है उसको हमको घर के अंदर जो है ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में ये जा रहे थे ICC ODI सुपर लीग के मैचेस खेलने के लिए ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर सकते जो ODI वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है उसके लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है इस वक्त जो है जो 8 टॉप की टीम उसमें नहीं है, 11th नंबर पे इस वक्त स्टैंड करता है और इन्होंने 13 में से सिर्फ 4
दे कुड बी आउट
13 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस ही जीते हैं और इसलिए अब ये कहते हैं कि अब हम ऐसे खेलना चाहते हैं टूर्नामेंट्स के जिसकी वजह से टीम शायद थोड़ा सा कुछ ऊपर आ जाए, एट नंबर्स में आ जाए और फिर हम करें, लेकिन मुश्किल ही है इनका, 11 से 8 पे कैसे आएंगे जी। एंड एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज जी अबाउट यंग पाकिस्तानी बिलियर्ड प्लेयर जो कि ये इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हो रही थी, तो उसके अंदर जो हमारे एहसान रमजान हैं जो फर्स्ट राउंड था उसमें यूएसए के अहमद अली अल सैयद को इन्होंने हराया है और ये 11th एडिशन ऑफ द गेम बर्मिंगम अलाबामा यानी कि यूएसए के अंदर हो रहा है और वहां पे ये पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैं जो कि गए हुए हैं और राउंड ऑफ 16 में इन्होंने अपने अपोनेंट को आउट क्लास किया। यंग सा ये बच्चा है, बिल्कुल एटलीस्ट सम गुड न्यूज,
वेरी गुड न्यूज, दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज। Anyway,
यंगस्टर्स तो कमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में माजिद भाई, यंगस्टर्स आर माशाल्लाह डूइंग सो वेल, हैट्स ऑफ टू देम। इतनी मुश्किलों के बावजूद द वे दे हैव फॉट एंड दे हैव मेड देयर वे टू द टॉप, इट इज अमेजिंग, शोज द रेजिलियंस ऑफ द नेशन, अमेजिंग अमेजिंग जिस तरह वो आगे 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 जा रहे हैं।
इससे पता क्या लगता है, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है,
बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यस यस यस,
पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होगा।
दे जस्ट नीड टू मेक सम गुड डिसीजंस इन पॉलिटिकल रेल्म, वहां पे अगर ये जो बैठे हुए हैं ना खराब किस्म के लोग, उनको अगर ये बिल्कुल बोल दें हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं है, कुछ शायद देनी पड़ेंगी कुर्बानियां, कहेंगे अच्छा ठीक है गोली मार दो यार, गोली मार दो, पर तुम्हें वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे बिल्कुल, अब तुमको नहीं आने देंगे। जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा ना माजिद भाई, उस दिन ये सारे बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, इनको पता है कि हम क्यों इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमने तो जीतना ही नहीं है।
ऑनेस्ट ऑनेस्ट इलेक्शन,
ऑनेस्ट लोग अगर ऊपर आ जाएं, अच्छे लोग आ जाएं, पढ़े लिखे लोग आ जाएं,
पढ़े लिखे ना, ये तो वहां पर तो पढ़ाई कमी तो नहीं है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कमी तो नहीं है, और वेरी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट लोग बसते हैं उस मुल्क में, तो अगर उनको चांस है, बस चांस अगर मिल जाए उनको, तो पाकिस्तान को देखो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, मगर
लेकिन वही है कि वो डरते हैं, वो कहते हैं जी कि वो जो पढ़ा लिखे लोग हैं ना जिनसे मैं बात करती हूं, वो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हमारी माँ को जो है हमारी पॉलिटिकल अफिलिएशंस की वजह से कोई गाली दे खड़ा होके कि तुम्हारी माँ ऐसी थी या तुम्हारा ऐसे थे, या जैसे वो करते हैं ये लोग नंगी तस्वीरें जी फिकवा रहे हैं और ऐसे वो जोड़ जोड़ के तुम्हारे तो इसके साथ तक चक्कर हैं और ये जो चवलेटियां हैं ना वो उनसे बड़ा लोग जो पढ़े लिखे हैं ना बेचारे वो बहुत डरते हैं इन चीजों,
क्योंकि पढ़े लिखे अच्छे घराने के हैं ना,
हाँ वो अच्छे घरानों के हैं, जाहिर है कि जो हार्वर्ड जा रहा है माजिद भाई वो तो किसी मड़े घर का नहीं हो सकता ना, जिसका बाप जो है हार्वर्ड के पैसे दे रहा है बच्चे को पढ़ने के लिए या स्टैनफर्ड या येल के पैसे दे रहा है, वो तो मड़े घर का नहीं हो सकता ना।
एग्जैक्टली,
तो दैट्स द थिंग।
ये थी आज की खबरें हमारी और बाकिया की खबरें इंशाल्लाह ताला कल जुमेरात है जी, जुमेरात को हम फिर पहुंचेंगे आपके पास, बी रेडी 5:30 बजे, हम 5:30 बजे कहते हैं मगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई परवाह नहीं कर रही, दिस इज पीएसटी पाकिस्तान स्ट्रेच टाइम कहते हैं उसको,
स्ट्रेच टाइम,
स्ट्रेच टाइम,
या
तो आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मीन्स पाकिस्तानी या इंडियन, डजंट मैटर, यू नो,
चिकन की तरह जरा घसीट लेते हैं
हम लोग जो है ऐसी
च्यूइंग गम नहीं बोलना, चिकन बोलना है,
5:30 की दावत है तो 5:30 बजे हम घर से निकलते हैं, तो वो लोग तो
पीएसटी एंड आईएसटी है,
पीएसटी आईएसटी इज व्हाट,
इंडियन
इंडियन
स्ट्रेच टाइम,
स्ट्रेच टाइम
और पाकिस्तान, और पीएसटी जो है पाकिस्तान स्ट्रेच टाइम,
सो एवरीबॉडी हु इज पीएसटी और आईएसटी, आप लोग याद रखें कि हम 5:30 बजे हमारा टाइम होता है यहाँ पर आने का, मगर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, हम भी यहाँ पर स्ट्रेच कर रहे होते हैं,
माजिद भाई जरा थक जाते हैं ना ऐसे, जरा वो रिलैक्स कर रहे होते हैं लेट के, थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं।
I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अभी आप हमारे साथ और ज्यादा नहीं गए आपने, मैं आपको बता दूं अभी कहीं जाना भी आपने, जीशान विद अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन, शादी जी थैंक यू सो मच, पाकिस्तान पॉप म्यूजिक की हिस्ट्री बताएंगे, इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, रिकॉर्ड्स क्या है उसके, लाइव एंड एक्सक्लूसिव शो अबाउट पाकिस्तान पॉप म्यूजिक, वी गोना टेक सम ब्रेक एंड उसके फौरी बाद हम प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड, डोंट यू गो अवे, टॉप ऑफ द आवर, विल बी राइट बैक,
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान सुनो ट्रक जिदा का भी चलाने हो मैनुअल या ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL because we care
ओ माया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 905-874-7171
ओ बल्ले भाई बल्ले मैं तो बन गई ओनर अपनी ट्रकिंग कंपनी की क्योंकि मैंने ली थी ट्रेनिंग उस कंपनी से जिसके हैं 500 से ज्यादा 5-star गूगल रिव्यूज नाम है मेज कंसल्टेंसी तो अगर आपको भी ट्रक डिस्पैचर या फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट बनना है तो आज ही ट्रेनिंग के लिए मेज कंसल्टेंसी को कॉल करें नंबर है 9058262919 दैट इज 9058262919 बल्ले बल्ले
आदमी